उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी
समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम आपको पूर्वोत्तर के राज्यों की अद्भुत विविधता और विकास यात्रा की कुछ अनकही कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आइए पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य की यात्रा पर निकलते हैं। पूर्वोत्तर भारत, जिसे देश के भविष्य का पावर हाउस कहा जाता है, ये तेजी से विकास का इंजन बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सभी प्रयास जारी हैं। आइए अब ले चले आपको हम सिक्किम की ओर।
माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला यह अभियान प्रकृति और मातृत्व के बीच पोषण के बंधन का प्रतीक है। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने एक पेड़ माँ के नाम प्लांट फॉर मदर अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। यह इशारा न केवल इस उद्देश्य के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी दर्शाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता वाला एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें इस अभियान के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला गया और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। सिक्किम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है, जिसमें राज्यपाल की भागीदारी एक सशक्त उदाहरण है। उनके कार्य माताओं के सम्मान और पर्यावरण की रक्षा पर अभियान के दोहरे फोकस को रेखांकित करता है, जिससे राज्य में अन्य लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में खेती के अपने अनुभव साझा किए और सिक्किम में वर्षा जल संचय और पॉलीहाउस खेती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग और सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। आधुनिक मशीनरी और बेहतर विपणन रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों पर संतोष व्यक्त किए और राज्य में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। स्मरण हो, राज्यपाल द्वारा अभियान का समर्थन स्थानीय कृषक समुदाय के साथ उनकी सहभागिता सिक्किम की टिकाऊ और हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
कृषि के क्षेत्र में पूर्वोत्तर की जैविक क्रांति एक स्थायी भविष्य की दिशा में अग्रसर है। कृषि, वाणिज्य, मत्स्य और वन उत्पाद उद्योग पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ की मिट्टी और जलवायु में कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ विशेष फल और सब्जियाँ इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अब हम मणिपुर की ओर चलते हैं, जहाँ की जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में हमें बताएंगे हमारे इम्फाल से संवाददाता जे थॉकचो।
मणिपुर की जैमैंग झील प्रकृति की एक अनोखी रचना है और कांगपोपी जिले में मराबौ रेंज पर लगभग 7,252 की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मणिपुर में कोबरू रेंज की एक विस्तारित श्रृंखला है। जैमैंग का अंग्रेजी में शब्दिक अर्थ कुछ इस तरह से होगा, यानी लैक ऑफ पजल। हिमालयी मगरमच्छ न्यूज जैसे स्थानीय तौर पर तजुई टाको के नाम से जाना जाता है, यही एक स्थानिक और लुप्त प्राय प्रजाति है जो केवल जैमैंग झील में एक सीमित आवास में ही पाई जाती है। इस अनोखी प्रजाति की संरक्षित करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में कांगपोपी जिले के थोंगलांग अकुटपा गांव में 2 दिवसीय पहला तदुई ताको महोत्सव आयोजित किया गया था। महोत्सव के एक भाग के रूप में मगरमच्छ जैसी जीवों यानी उभयचर का महत्व, लाभ और संरक्षण की आवश्यकता पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा हिमालयन क्रोकोडाइल न्यू तदुई तपकों की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर एक वार्ता का भी आयोजन किया गया। महोत्सव में कांकोपी जिले के उपायुक्त महेश हीरालाल चौधरी ने कहा कि इस विशेष प्रजाति की स्थिति खतरे में है, इसलिए जानवरों को संरक्षित करना और झील का संरक्षित करना भी सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने कहा,
दिस पर्टिकुलर स्पेसिस इज एंडेंजर, द स्टेटस इज एंडेंजर एंड इट इज अंडर IUCN एंडेंजर स्पेसिस लिस्ट, सो इट बिकम्स अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, टू टेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व दिस एनिमल एज वेल एज द लेक।
समापन के दिन इस झील की स्थिति के मूल्यांकन भी समीक्षा करने के लिए संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों ने जैमेंग झील का दौरा किया और उसे देखा गया। कार्यक्रम में रंगरंग सांस्कृतिक नृत्यों को भी धूम रही। संगाई महोत्सव, चेरी महोत्सव और सिरोई लिली महोत्सव के बाद जो सभी राज्य स्तरीय त्योहार है और इन्हें इन्हीं संबंधित प्रजातियों के संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है और तादुई ताको महोत्सव की पहली बार मणिपुर में जैमेंग झील में पाए जाने वाले अद्वितीय मगरमच्छ प्रजातियों के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोकसोम।
मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां विभिन्न जातीय समूह साथ रहते हैं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। राज्य की युवा पीढ़ी इन जातीय समूहों की लोक कलाओं के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लकड़ी पर नक्काशी एक ऐसी कला है जो सभ्यता के अतीत, वर्तमान और भविष्य की पहचान को उजागर करती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच 350 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 2022 में भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की थी और 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की थी। इस जनसंख्यांकी लाभांश को किसी राष्ट्र की सफलता और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं को राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत की। ऐसा ही एक प्रयास है युवा प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार, जिसे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा लोक कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस वर्ष उत्तर पूर्व भारत के 17 युवाओं को लोक कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें मणिपुर के 4 प्रतिभाशाली युवा कलाकार भी शामिल हैं। इनमें थोकचोम लांसना देवी को मणिपुरी लोकगीत के लिए, हंजाबम लोईजिंग देवी को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए, नामी राकपम अप्रिला देवी को चित्रकला के लिए और ए वंगुमीखन को लकड़ी की नक्काशी के लिए पुरस्कार मिला है। ये सभी 125 आवेदकों में से चुने गए 18 पुरस्कार विजेताओं में से हैं, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से थे। पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए पुरस्कार विजेता ए बुंगमिखन ने कहा कि नक्काशी मणिपुर की संस्कृति का हिस्सा है और वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से लकड़ी की नक्काशी पर शोध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा,
Because of schooling, you know, I can't concentrate. So after my 10 plus 2, I want to keep my full concentration in this art. But I have financial problem. So after my 10 plus 2, I drop my college. I drop everything. But there's one school called Institute called KBJ Performing Artisans Institute in Bangalore, which is sponsored by Canara Bank. And everything is free. You know, it's from for underprivileged who isn't like, it's like for people who is not able to pursue their studies. Canara Bank sponsored. I went there. The work that we did is that work was sold, and with that money we were like sponsored. So everything is free. I learned my basic wood and stone carving. That institute is for 1.5 years. So after completing this wood and stone carving, it's a diploma course. So I was thinking like this diploma isn't taking me anywhere. So I came back to pursue my degree course in the Manipur University of Culture. I learned all types of wood carving, fiber casting, clay modeling, everything I learned from this Manipur University of Culture. I want to pursue my master again because I want to know a little bit about this culture. Sculpture, like carving, you know, it's like a part of my culture. So I want to research more on that. As of now, I'm pursuing my this Master of Fine Arts in Sculpture in Tripura University. I don't think that I won't be able to select, but I'm overwhelmed with gratitude and humility upon receiving the award. And I never expected to be selected, considering the exceptional talent surrounding in me. However, with the support of friends, families, and community, I'm overwhelmed with gratitude. As of now, I'm doing my master's degree. As I've mentioned, but if possible, I want to pursue my BSc degree, So I was planning to research more about our culture that is like, as I've mentioned, this wood carving is part of my culture. There's many carving patterns that is left behind this. Most of the elder generation, they are almost carving that is, they do not know properly what. As they get older, they are about to forget. Like, traditions is almost about to extinct, If possible, I was thinking I want to pursue more and I want to research more about our traditions.
नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स के संस्थापक हितो कीहो के साथ एक दिलचस्प बातचीत सुनवाते हैं। इस प्रतिभाशाली समूह ने जुलाई 2024 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित 13वें वर्ल्ड कॉयर गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हितो कीहो द्वारा सितंबर 2023 में स्थापित इस कॉयर ने कंटेम्पररी म्यूजिक मिक्स्ड वॉइसेस और मिक्स्ड चैम्बर कॉयर श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। हमारी प्रस्तुतकर्ता तेमसू रेनला द्वारा लिया गया उनका साक्षात्कार प्रस्तुत है।
द नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स इज वन ऑफ द मेजर कोरल ग्रुप बेस्ड इन दिमापुर नागालैंड फाउंडेड इन सितंबर 2023 एंड लेड बाय फाउंडर एंड कंडक्टर मिस्टर हितो कीहो। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एसोसिएटेड ग्रेजुएट्स ऑफ द म्यूजिक कंजर्वेटरीज एंड ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस। द एंसेंबल परफॉर्म्स a wide repertoire of various styles and forms, classical choral works, sacred Asian Naga folk songs, international folk songs, contemporary music, and even popular music. The Nagaland Madrigal Singers has performed for various occasions for the Ministry of Culture, namely Vivitta Ka Amrit Mahotsav at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, for the President of India, and Adi Mahotsav organized by the Ministry of Tribal Affairs. In the recent 13th World Choir Games, which was held in Auckland, New Zealand from 10th to 20th July 2024, the Nagaland Madrigal Singers represented India and won 2 gold medals for the country and brought back laurels for India. Today we have Mr. Hito Kiho, the founder and conductor of the group, with us. First of all, how does it feel to win gold medals at the World Choir Games 2024?
It just gives us an immense pleasure, actually, to have declared the gold medal in the World Choir Games. See, the Nagaland Madrigal Singers, our dream and vision is to elevate choral music in India, and particularly in Nagaland as well. And one of our very important vision is we want to bring out our rich culture and tradition through music to the outside world. And so, not just winning the gold medals, but we were also able to demonstrate and bring our culture to the outside world. So that gives us a lot of pleasure to be able to do that. Yeah.
And I'm sure a lot of preparation has gone into it. Mm. So can you tell us a little bit about the preparations and if there was any challenges that has been faced leading up to the competition?
TNMS comprises of singers who are all musicians, yeah, and they are all professionally trained musicians. Mm-hmm. So that's one plus point when it comes to preparation. The other thing is they're all professionals and they are teaching here and there. They are working, and unlike other profession musicians, we don't have a specific time. Like, you know, sometimes our classes, our assignment goes until late in the evenings, like around 6:30, you know. Mm-hmm. So I think one challenge was that trying to set our rehearsal time where everybody can come in together, because it's not a small group. And we started in 2023, that was like, you know, in the month of September.
Yeah.
And since its inception, we have decided, like, as a team, that we will compete in the World Choir Games, and that was 13th World Choir Games. So here and there we have been performing for the Ministry of Culture in Delhi and around, you know. And so there were other rehearsals for those performances as well, plus side by side we also had to rehearse for our World Choir Games. So yeah, there were a lot of challenges, but despite that, we were able to go through it.
Like you have mentioned that it is a large group, it is a choir, and also you were performing at a global stage. So can you tell us a little bit about how did the group manage to maintain the cohesion and the harmony under such immense pressure?
One thing that keeps the group going is the positive attitude.
Mm.
Yeah, I always keep mentioning about this. And I think as long as the attitude is right, then everything goes well. So I think that was one thing, that even though we were busy performing here and there, you know, going around, yet we were focused in that very thing. We knew that we had to go and we had to do something and bring back something. That was our vision, that was our aim. So yeah, by God's grace, we did it.
Okay, so can you tell us a little bit also about the pieces that you have performed in the competition? Mm-hmm.
For the pieces, there are certain guidelines which the organizers, that's Interkultur. Interkultur is an office, is an organization based in Germany, and they are the ones who organizes this World Choir Games and other competitions in and around the world. So they give us a certain guidelines. So we have to choose pieces, like, you know, there are some pieces which we have to choose from the country which we come from. Yeah, there was something like that. There are some pieces which we have to choose from, like, you know, 19th, the composer who is still alive, yeah, or like the composer born before 1950, like, you know, certain requirements or certain guidelines were given by the Interkultur. The other thing is that since it's a competition, so I decided, like, you know, I thought, like, what if I just bring in as variety as I can to, you know, bring in more harmony, more different colors into the songs. So that's how we came up with this repertoire.
So were there any unique elements or innovations in your performance that you think that have set you apart from the others?
Yeah, see, we competed in the two categories. That was one was contemporary mixed voices, and the other one was mixed chamber choir. So in both the competitions, the choirs that we competed were, like, you know, they had like a huge number of people. Some choirs had more than 40 singers, whereas our team, we just had 22. But I think, in other words, on a positive note, I think that we also had songs which we had movements, you know, like dances and songs, you know. So in other words, I think that somehow made a little bit different from the other choirs, I believe.
It was such a big stage that you have performed. So can you share some of the memorable moments?
It's a competition. It's a World Choir Games, where there was 42 countries, 250 choirs, and then more than 11,000 singers. Apart from the world coming in to compete, I think one very good thing that we can also, what we learned was also from the other choirs. That, you know, you get to meet people from all other countries, wonderful choirs from other countries, wonderful conductors, composers from other countries, and, you know, you get to interact, you know, you get to build your relation outside. So I think that's a good thing, that's a very good thing about competing in such big events.
So how do you think participating in the World Choir Games has impacted your choir's dynamic?
We won gold medals in the World Choir Games. But this is what I've been reminding the choir and the entire members, that this is a laurel which we cannot rest in. We should do even more. And so I think even after winning that 2 gold medals in the World Choir Games, group, the entire team is very much willing to march forward and, you know, do more in the days to come. Yeah.
Okay. So you have mentioned that you want to do more. So what are the plans following this significant win or how do you plan on building on this success for the choir?
The Nadal Madrigal Singers is a very is a team that was built not just within few days plan or like just coming together, but I've been thinking about such a team for many years, even when I was a student. So even more than a decade that I've been thinking to start such a choir like this, where the entire setting is just the musicians only. So I always believe that music is universal. Everybody understands it. Everybody loves it. But there are some languages, there are some music language only a musicians understand and feels it. So I've been longing to do such kind of, like, you know, start such such team for such a long time. And so this has come this far. Yeah. In next month, we will be celebrating our 1 year anniversary. And we planned, like, you know, today we are just 25 of us in the Madrigal Singers. But my dream and our dream and vision is that we want to see, in the coming years, we want to see hundreds of Madrigal Singers, where we want to train musicians who want to come together and sing in a harmony. And, you know, as our vision and dream says that we want to carry on these dreams and visions to the outside world with the music that we create and letting outside or letting the world know that there is a people called Nagas and they have a rich culture and tradition.
Thank you so much for your time.
You.
It was a pleasure talking with you.
Thanks to you as well. Thank you.
आपने अभी नागालैंड मेड्रिगल सिंगर्स के संस्थापक हितो किहो के साथ हमारी प्रस्तुतकर्ता टिम्सन रिनला द्वारा लिया गया साक्षात्कार सुना। मेघालय सरकार मानव तस्करी से संबंधित मौजूदा कानूनों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। भारत ने 2018 से 2022 के बीच 10,659 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए। गृह मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति वर्ष औसतन लगभग 2,000 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2022 में सबसे अधिक 2,250 मामले दर्ज हुए हैं। मेघालय भी इस अपराध से अज्ञात नहीं है। पिछले 10 वर्षों यानी कि 2013 से 2023 तक मेघालय ने कुल 7 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए हैं। 2016, 18 और 2021 में एक एक मामला और 2019 तथा 2022 में दो दो मामले दर्ज किए हैं। बुधवार को मेघालय पुलिस द्वारा आयोजित मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान गृह विभाग के प्रभारी तिनसोंग ने कहा कि मेघालय में इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से सम्मेलन के दौरान की गई चर्चाओं के बाद की गई टिप्पणियां और सुझाव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौजूदा कानूनों को मजबूत करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। तिनसोंग ने स्थानीय प्रशासन को भी गांव स्तर तक शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, ये बताते हुए कि केवल कानून परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समुदाय के हर स्तर की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। कानून मंत्री अम्प्रीन लिंडोह ने कहा कि मानव तस्करी के शिकार लोगों को सबसे उपयुक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार के रूप में ये समय है कि हम सभी उन खामियों को दूर करें जो मेघालय राज्य को आगे बढ़ने और मानव तस्करी के शिकार लोगों की रक्षा करने में मदद करें, ऐसा लिंडोह ने कहा। उन्होंने पुलिस विभाग से अनुरोध किया कि वे इस सम्मेलन के बाद कानून के लागू होने में मौजूदा खामियों को भरने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करें। यदि हमारे पास केवल कागजों पर कानून है तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून लागू हो जब नागरिक संकट में हो, उन्होंने कहा।
Suitable assistance to people who have been trafficked. Trafficking, as Madam Naimon has correctly indicated, sees no bar of sex, age or gender. And we know that as a government, it is indeed high time that we address all the gaps that will enable the state of Meghalaya to move ahead and protect those that have been undertake such traumatic journeys. On behalf of the Department of Law, I urge upon the Police Department that after this conference that you will be sitting and debating, you will send your recommendations for the gaps that you see relevant in the matter of application of law. Very important for us to not just have law on paper, but to ensure that that law is applicable and can come to the rescue of a citizen in distress. Government is also concerned that very often when you talk about trafficking, officials leave it to women officials to attend mostly to these problems. I want to ask why. It is not a woman problem, for your kind information. Men and women have to come forward, and it is incorrect to say that this intra-departmental connection that is lacking is to be forgiven by all. So today, Madam Norman, looking forward to your recommendation. Which law has which effect? Which law cannot be implemented? What are the difficulties? Which are the areas of concern? So that we move ahead and be serious about addressing this grievous crime. The other concern as a law minister of the state of Meghalaya is, do we have enough law providers? Are there enough lawyers, advocates, CPs, district representatives? Do we have this important connection that is important for the people of the state of Meghalaya? We need to put it out.
संभवतः केवल पुलिस और कानून विशेषज्ञ ही विभिन्न प्रकार के कानूनों और उनके कार्यान्वयन से अवगत हैं। सवाल ये है, ये कानून मेघालय में कितने लागू हैं? क्या राज्य में पर्याप्त कानून प्रदाता, सरकारी वकील और वकील हैं? कई कानूनों के बावजूद मानव तस्करी से संबंधित समस्याएं अनसुलझी रहती हैं। सरकार को एक व्यापक कानून तैयार करने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से तस्करी से संबंधित जटिलताओं को संबोधित करे। साथियों, पूर्वोत्तर की इस रोमांचक यात्रा को साथ तय करने के बाद अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अगली बार फिर हम मिलेंगे आपसे यहीं पर। हमें बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं airnsdtalks@gmail.com या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर। आलेख और संकलनकर्ता सुनीता, तकनीकी सहायक दानिश जैदी के साथ प्रस्तुतकर्ता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।